ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार श्री विष्णु के मेरे देवताओं और ऋषियों के तथा अन्य लोगों के स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन शंभु ने समस्त ऋषियों देवताओं आदि को कृपा दृष्टि से देखकर तथा मुझ ब्रह्मा को विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहा। महादेव जी बोले, प्रजापति दक्ष, मैं जो भी कुछ कहता हूँ सुनो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ, तो भी सदा ही अपने भक्तों की अधीन रहता हूँ। चार प्रकार के पुण्य आत्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। दक्ष प्रजापति उन चारों भक्तों में पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उनमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अथार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के तीन तो सामान्य श्रेणी के भक्त है, किंतु चौथे का अपना विशेष महत्व है। उन सब भक्तों को चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है। वह मेरा ही रूप माना गया है, उससे बढ़कर कोई मुझे प्रिय नहीं है, यह मैं सत्य कहता हूँ। वेद वेदांत के पराक्रमी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे ज्ञान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मंद है, वे ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद, यज्ञ, दान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। अतः दक्ष, आज से तुम मेरी बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय ले समाचित होकर कर्म करो। प्रजापते, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषयों में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण रूप में ब्रह्मा हूँ और मैं ही विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ। सर्वप्रथम तथा निर्वेश हूँ मुनि, तथा अपनी त्रिगुण आत्मा माया को स्वीकार करके मैं ही जगत सृष्टि पालन और संहार करता हूँ। ऐसी प्रक्रिया बुद्धि कभी नहीं करता। उसी तरह मेरा भक्त परिमाण में मुझसे भिन्नता नहीं देखता। दक्ष, मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूप एक ही है तथा हम ही संपूर्ण जीव रूप है। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं रखता, वही शांति प्रदान करता है। जो नारद हम तीनों देवताओं में वेद बुद्धि रखता है, वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा, तो तुम्हें दिए हुए पूर्वोक्त सारे शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि भगवान महेश्वर के सुखदायक वचनों को सुनकर सब देवता मुनि आदि को उस अवसर पर बड़ा हर्ष हुआ। कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गया। वह देवता आदि भी शिव को सर्वेश्वर जानकर भगवान शिव के भजन में लग गए। जिसमें जिस प्रकार के परमात्मा शंभु की स्तुति की गई थी, उसी से उसी प्रकार संतुष्ट उठे शंभु ने वर दिया। मुनि तदंतर भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव के अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को यज्ञ भाग दिए गए शिव को भी पूर्ण कर दिया, साथ ही ब्राह्मणों को और ब्राह्मण को दान दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस तरह उन्हें शंभु का ग्रह प्राप्त होते ही विधि पूर्वक उनका वर्णन किया। प्रजापति ने संयोग से और अपने यज्ञ कर्मों के विधित्व को समाप्त किया। मुनीश्वर, इस प्रकार ब्रह्मा शंकर के प्रसाद से वह दक्ष का यज्ञ पूरा हो गया। उस समय वहां से सुखपूर्वक सब विदा हो गए। मैं और श्री विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सर्व मंगलदायक सुवेश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानंद चले गए। सत्पुरुषों के आश्रय भूत महादेव जी दक्ष ने सम्मानित हो प्रीति और प्रसन्नता के साथ गणों के सहित निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान प्रधान गणों से उनकी कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मीना के गर्भ से उत्पन्न हुई, यह प्रसिद्ध है। फिर वहाँ तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वरण किया। वह उनके वाग्मन में स्थान पाकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। नारद, इस तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग और मोक्ष देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह उपाख्यान पापों को दूर करने वाला पवित्र एवं पावन है। स्वर्ग, यश तथा आयु को देने वाला, पुत्र पौत्र फल प्राप्त करने वाला और देने वाला है। तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से लोगों को यह कथा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परिगति को प्राप्त कर लेता है।